ॐ शांति। अपने महावाक्यों में हमको सुना रहे हैं कि मैं इस धरा पर आया हूं पतितों को पावन करने के लिए। पावन करने से पूर्व दुखियों को सुखी करता हूं, उनका दुख हरता हूं और बच्चों को भी पाप का ये आदेश है कि तुम किसी को पति से पावन तो नहीं बना सकते लेकिन दुखी को सुखी बना सकते हो। और दुखी को सुखी बनाने के लिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को काम दिया हुआ है, सारा दिन में कोई भी समय और प्रातः उठते ही विश्व के ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का साकार दो। बच्चे, दुनिया बहुत अशांत है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ऐसे दुखी परेशान आत्माओं को दुख और परेशानी से मुक्त करने के लिए तुम मुक्तेश्वर बाग के बच्चे निमित हो। वास्तव में तुम्हारी ये सेवा तुम्हें अंतकाल बहुत सुख को प्राप्त कराएगी। जब अंतकाल में महाभारी विनाश के समय आत्माएं लाखों करोड़ों की संख्याओं में शरीर छोड़ेंगी और एकदम कहीं मुक्ति धाम या गर्भ में नहीं जा सकेंगी, तो कुछ समय के लिए सूक्ष्म रूप से इस साकार वतन में मंडराएंगी। ऐसे समय वे आत्माएं आपको भी कष्ट दे सकती हैं, क्योंकि आप शांति में बैठना चाहेंगे। ये आत्माएं जो भटक रही होंगी वे आपको शांति में नहीं बैठने देंगी, क्योंकि वो बहुत अशांत हैं, वो आपसे भी शांति चाहेंगे। ऐसे समय आने से पूर्व आप विश्व की आत्माओं को अपना मित्र बना लो। योग का साकार दो, शक्तियों का साकार दो, शांति का साकार दो। जिनको आपने साकार दिया होगा वे आत्माएं अंत समय आप बच्चों को तंग नहीं करेंगी, आपके मार्ग में रोड़ा या अड़चन नहीं बनेंगी। इसलिए बार बार बाबा बच्चों को आदेश देता है कि एक स्थान पर बैठे हो लेकिन विश्व की आत्माओं को साकार देने के लिए कोई भी समय ग्लोब पर बैठ जाओ या ग्लोब अपने सम्मुख रख के सारी विश्व की आत्माओं को योग का साकार। और हमने देखा बाबा साकार में अपने कमरे में बैठ करके कई बार विश्व की आत्माओं को साकार देते। यही कहते थे, बच्चे आप बच्चों को आवाज नहीं सुनाई देती दुखी परेशान और अशांत आत्माओं की, इस बाबा को कई बार आवाज सुनाई देती है, ये रेस्ट नहीं कर पाता, उन आत्माओं को साकार देता हूं। फिर बाबा के ये महावाक्य थे कि जब आप बच्चों के हृदय में सर्व आत्माओं के प्रति रहम होगा, प्यार होगा, दया की भावना होगी, तभी आपको इन दुखी परेशान आत्माओं की आवाजें सुनाई देंगी। जब तक आपके हृदय में करुणा दया रहम की भावना नहीं तब तक आपको वो आवाजें सुनाई भी नहीं देती। तो बाबा के हम बच्चों को जो महावाक्य मिले हुए हैं, ये समय है कि हम उनका पालन करते हुए अपने भविष्य को भी सुधारें और अन्य आत्माओं को भी परेशान होने से बचाएं। और आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं, लेकिन जब हमारी मामा जहां जाती थी तो बाबा विशेष आज्ञा देते थे कि मामा को खूब फूलों से सजाना, खूब वेलकम करना। और जब बाबा व्यक्त हुए तब बाबा ने कहा था, ये दादियां भी जहां जाएंगी उनका भी स्वागत अच्छी तरह करना, कोई ये ना समझे कि इनका अभी कोई बड़ा रहा ही नहीं। इस प्रकार उन बड़ों को बड़प्पन दिखाने के लिए दुनिया की सेवा अर्थ तुम इस प्रकार कर सकते हो, लेकिन साकार में बाबा ना फूल स्वीकार करता था ना बच्चों को ही स्वीकार करने के लिए कहता था। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि पूज्य व पुजारी नहीं बनते, तुम्हें भी संगम व फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम सब बच्चे पुरुषार्थी, लेकिन उस तख्त को प्राप्त कौन कर सकते हैं? तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले वही भविष्य तख्तनशील बनते हैं, जिन्होंने वर्तमान अपने श्रेष्ठ कर्मों से माता पिता का दिल जीत लिया है, ऐसे बच्चे ही भविष्य तख्तनशील बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। रिकॉर्ड है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना, कितने प्यार से बाबा महावाक्य सुना रहा है। सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना, इस गीत से जो ये गीत चला, इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है जो दुखियों को दुख से लिबरेट करने वाला है, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बताते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जिसका बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर दो शरीर नहीं होते हैं, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी ये फिर कोई बता नहीं सकते। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, साचो कहा जाता था, वही भारत पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है और फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? नई दुनिया का साक्षात्कार तो बच्चों को हो गया, लेकिन नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। तो बाबा अपने पास हमेशा लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखते थे और वाणी के मध्य कई बार उस चित्र की तरफ इशारा करते थे। कभी वो चित्र ट्रांसलाइट का बन के आया, किसी किसी ने कपड़े का भी चित्र बनाया, किसी ने पेंट करके भी लाया, वैरायटी चित्र होते थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा के दाईं तरफ जरूर पड़ा होता था। बराबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, मैं तो आता हूं, इसमें सर्वत्र व्यापक की तो बात ही नहीं रहती है। हरि का पाठ अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, कई बार कह देते हैं और रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? देह अभिमान छोड़, तुम आत्म अभिमानी बन। और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बोले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, तुम तो याद शिव बाबा को करो। ऐसे समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा है नहीं, भले इनका रूप साकार का रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है और तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जाने चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वे इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वे है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। जब बच्चों ने एक बार अपना परिचय बाबा ने दिया बच्चों को, और बच्चों ने कहा बाबा बड़ा मुश्किल है बिंदु को याद करना, बिंदु खिसक जाता है, और बाबा ने भी कहा ये तो पारे माफी के है, ये याद खिसक जाएगी, लेकिन बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। फिर बाबा ने जब सरल सरल करके कई बातें बताई और बच्चों ने फिर भी मुश्किल कहा, कहा बाबा हमें तो बस साकार स्वरूप ही सामने चाहिए, तब बाबा ने कहा कोई बात नहीं, साकार को भी देखो, लेकिन देखो इस साकार में देखता कौन है, इस साकार से ज्ञान सुनाता कौन है, इस साकार द्वारा आपकी बात सुनता कौन है, साकार को देखो, लेकिन देखते भी साकार नहीं निराकार को ही देखो। बच्चे याद तो उसी को ही करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा नहीं सकता। बच्चों की बुद्धि में है वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, वह दरकार ही नहीं होती है। राजधानी स्थापित हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से भी पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सत्सों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने। साक्षों में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे, यहां तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है फिर नहीं हो जाएगी, वहां है ही एवरीथिंग न्यू, नाम ही है कितना मीठा, नई दुनिया का नाम ही कितना मीठा है, हेविन बहिष्ट देवताओं की नई दुनिया, पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात, इसलिए पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार ही नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो, आपे पूज्य आपे पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं, न फूल आदि की दरकार ही है, मैं क्यों ये पहनूं? इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओरिजिन फादर भी हूं, टीचर भी हूं और सर्वेंट भी हूं। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन, मानो जो नाम है उनके आदि आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लेकिन स्वयं को उस समय लॉर्ड नहीं लिखेंगे। यहां तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, हरे को पौकेते कुत्ता बिल्ली सभी यहां तो श्री श्री हो गए, लेकिन वहां श्री के लिए श्रेष्ठता है। एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं तो बाप बहन समझाते हैं अभी श्री को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का ही होगा, तो सोने में ही खाद पड़ती। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, निर्वाण धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल कर ठिकर बितर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से हिलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नोंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग, अंत, सतयुग आदि का ये संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे, अनेक धर्म नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसा समझो, क्या समझो, आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, हमेशा ऐसा समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। भले ब्रह्मा बाबा भी बीच में बोलते हैं, लेकिन वो भी वही बोलते हैं जो शिव बाबा बोलते हैं। हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवान ने वाचे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं। जो पूज्य थे वो पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनता। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूं और ना ही पूज्य बनता हूं, इसलिए मैं न हार पहनता हूं न पहनाने ही पड़ते हैं, ना मैं पहनता ना किसी को पहनाने पड़ते हैं, फिर हमें क्यों फूलों को, हम फूलों को क्यों स्वीकार करें। तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो, कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वो हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। प्रेरित करता रहता है बाबा, लेकिन जिसने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही करते हैं और करने लग पड़ते हैं। नंबर वार तो है और बुद्धि कहती है कि फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है, माता पिता के तख्त पर बैठना है। तुम वंडर खाते हो माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त मशीन बनाने के लिए इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनोगे। पुरुषार्थ इतना करो, कितना करो, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापित हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भले प्यार से चलाओ परंतु ट्रस्टी होकर रहो, भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, ये सब आपकी अमानत आपने ले ली, आपकी अमानत, और अगर कोई चला गया तो आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की तो बात ही नहीं रही, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शेर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं है, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। 21 जन्मों के लिए काया निरोगी बन जाती है, बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया, क्योंकि वो समय था जब पार्टीशन से पूर्व खून खराबा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तब बाबा ने अपने बच्चों को अंदर नई दुनिया के दृश्य दिखा करके बहलाना है कि बच्चे तुम देखो तुम्हारी दुनिया कैसी होगी, वहां की भाषा कैसी होगी, वहां की ड्रेस कैसी होगी, दिन में कितनी ड्रेस बदलेंगे, किस किस टाइम की ड्रेस, कौन सी ड्रेस होगी, कैसे खाना खाएंगे, कैसे राजे दूसरे राजे का अवभगत या स्वागत करेंगे। तो अपनी दादियां सुनाया करती थी कि किस प्रकार बाबा हम बच्चों को इतना बिजी किया कि कभी किसी का आवाहन होना है तो पहले से अलमैटी का संदेश आ जाता था कि बच्चों को उसकी ड्रेस, उसके खाने पीने का प्रबंध, उसके बैठने का सिंहासन, ये सब तैयार करना है। तो हम लगातार इन्हीं कामों में लगे रहते थे, बाहर क्या हो रहा है हमें फुर्सत ही नहीं, हम तो नई दुनिया के नजारे साकार जगत में देखने लगते थे। तो बाबा इस प्रकार के दृश्य बच्चों को दिखाते थे ताकि बच्चे अपनी नई दुनिया के आनंद में रहे। तभी बाबा बार बार कहता है, इस संसार के दुख गम को भूल तब सकते हो जब अपनी नई दुनिया के नजारे अपने सामने लाओ। बाबा को याद करो, लेकिन बाबा का वर्षा, जिस वर्षे की प्राप्ति के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वो वर्षा जरूर याद रखो। अगर वर्षा याद नहीं रहेगा तो बाबा की याद भी नहीं रहेगी। तो बाबा ने कहा, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, वह पाठ सब बीत गया। उस समय जब प्रारंभ में यज्ञ से माउंट आबू में आए थे तो यहां वो सब फाइलें, कोई इतनी बड़ी एल्बम्स तो नहीं थी लेकिन कागज की फाइलें थी बड़ी बड़ी, जिसमें उस समय के दृश्य चित्रों के रूप में सब चित्रित थे, कैसे संदेशियां जा रही हैं और कैसे बाबा धर्मराज की कचहरी कैसे होती है, सजा कैसे मिलती है, नई दुनिया का दृष्ट कैसा होगा, सब चीजें बाबा ने साक्षात्कार में अपने बच्चों को दिखाई थी। वो चित्र हम लोग देखा करते थे। वह पाठ सब बीत गया, कोई कहे अब दिखाए, अब वो बीत गया। हमें याद एक समय था, जन्माष्टमी तो होती है लेकिन छठी विशेष मनाई जाती थी, और छठी का वो दिन होता था, वो तो पार्टीशन के बाद इंडिया में आने पर भी चलता रहा, कैसे श्री कृष्ण की आत्मा संदेशी के तन में आती है और किस प्रकार छोटा बच्चा किस रूप से होता है, जब बड़ा होता है तो किस प्रकार उसका बड़प्पन दिखाई देता है और कैसे वो स्वयंवर के योग्य होता है, ये सब दृश्य बाबा दिखाते थे। दिवाली के समय ये सब दृश्य होते थे। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये खेल पाल है, खेल पाल जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाते हैं तो सब खेल पीरियड बंद कर देते हैं, इसलिए अभी वो समय नहीं है कि वो खेल पाल हम पुनः देख सकें। हाँ कल बात फिर चलेंगे, लेकिन अभी वो रोल नहीं है। वह पाठ सब बीत गया, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है, ये भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बारी आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात गुम करती है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत टूट गई है। ये तो परमात्मा ने आकर के सहज योग सिखाया है और दुनिया को बदलाया है। तुम बदलती, दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सच्चों के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं, तो बाप समझाते हैं। हमेशा ऐसा समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन, वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है और कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होता है। हाँ टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर ब्रह्मा बाबा का टीचर भी था, पढ़ाते थे, वो हद का फादर और टीचर, और ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो, तुम अपने को सब सोए हुए जाग के सुनो बाबा क्या कह रहा है। जाग के सुनने का मतलब जो बातें ग्रहण करने की हैं, सोई गए तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे ही नहीं तो ग्रहण करने का तो सवाल ही नहीं। तो ये भी जैसे ईश्वरीय अवज्ञाएं होती हैं, क्योंकि बहुत ढीले, चलो आ रही है नींद तो आने दो, झुटके मारने तो मारने दो, अपने ऊपर अलर्ट रहो, कैसे नींद आ सकती, कहीं आते ही ऐसे कर लेते क्योंकि उन्होंने सोने का प्लान बनाया होता है। तो यहाँ प्लान सोने का बना के नहीं आओ, दाता के महावाक्य सुनने आए हैं, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनने आए हैं, किस लिए यहाँ बैठे, ख्याल तो रखो। विस्मित हो जाते तभी तो बाबा कहते पढ़ाई क्यों विस्मित होती है, क्योंकि पढ़ाई द्वारा प्राप्त होने वाले पद की स्मृति नहीं रहती है बच्चों। तो बाबा ने क्या कहा, तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, ऐसा समझने वालों के लिए भी अहो सौभाग्य है। गॉड फादर पढ़ाते हैं कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकारों के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। आत्मा कहती है, बाबा कितना ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंचा बनाते। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागे वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य देवता बन पड़ते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के रूप से करनी चाहिए। पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी कॉलेज स्कूलों में नहीं देखा सोए पड़े हों, सोते नहीं हैं। तो बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत पलीते कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं, मैं कितना अच्छा धोबी हूं। अपने को आप ही कहेगा, बच्चे ना कहेंगे तो स्वयं कहेगा, मैं कितना अच्छा धोबी हूं। तुम्हारे वस्त्र, तुम आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना, ये सारा कार्य शिव बाबा का है। उनको ही याद करो, इनसे मीठा वो है। ब्रह्मा बाप भी कम मीठा नहीं है, लेकिन इनसे भी मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं, तुम इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को कर। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसा प्यारा बाबा सुबह सुबह अपने बच्चों को बैठ पढ़ाता है। किस लिए पढ़ाता है? कोड़ी जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा के दिल रूपी तख्त पर, बाबा के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। तख्त पर जीत कौन प्राप्त कर सकता है, सोचिए इस बात पर। पुरुषार्थ तो करें, लेकिन क्या पुरुषार्थ, कैसे जीत पाएंगे? वो कर्तव्य करें, वो संकल्प करें जो बाबा को प्यारा है। वो बोल बोले, वो एक्ट करें जो बाबा को प्यारा है। बाबा कहते सारा दिन चेक करो, आपने बोल कर्म व्यवहार वो किया जो बाप को प्यारा है। ये जनरल कर लिया, खाना खा लिया, लेकिन बाबा को क्या प्यारा है? मेरे को याद करते हुए भोजन पान करो, चलो, लेकिन हर कदम मुझे अपना साथी बनाकर साथ मेरे चलो। ये बाबा को प्यारा लगता है। तो जो बाबा को प्यारा है, तो बाबा ने कहा बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। मोह भी नहीं रखना, मोह जीत भी बनना है और प्यार से सबको चलाना भी है। दूसरा है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बात को करना है, यहां तक कि जिस तन में शिव बाबा आया है उस तन को भी देखते हुए नहीं देखना, तो अन्य को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखते हुए भी ना देखो, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बात को करो, यहां फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना वरदान है। प्रलब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। इसके स्पष्टीकरण सुनिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रलब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते हैं। जहां इच्छा है वह स्वच्छता खत्म हो जाती है और स्वच्छता बन जाते हैं। जो यहां ही प्रलब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपने भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, सदा बेदागी हीरा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते हैं। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो। साधन तो खूब मिलते हैं और मिलेंगे, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। कर्मों का फल है, प्राप्त होता है, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर यूज करो, अटैच्ड होकर यूज ना करो। अव्यक्त इशारे, सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। दो गुण उनके शोभायमान होंगे, सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं, वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं है तो स्नेह भी नहीं हो सकता है। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, बच्चों के साथ बाबा बच्चा बन जाते थे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य, जिनको हम कहेंगे ईश्वरीय पालना। ये दान देने वाली प्रभु पालना। चलो, कोई समाचार सुनाने वाला शायद नहीं है।